ये आकाशवाणी है। अब आप मुद्रता से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल को 3 सप्ताह के भीतर अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत देशभर से डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय कार्यबल सृजित कर रही है। यह कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। देशभर के डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के असुरक्षित कामकाजी माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा कि वर्तमान कानून डॉक्टरों की सांस्थानिक सुरक्षा को सही प्रकार से व्यक्त नहीं करते हैं। इधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने उसके कार्यालय से इस मामले की जांच से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित एक फर्जी पत्र के बारे में लोगों को आगाह किया है। सीबीआई ने पत्र और उसकी सामग्री को फर्जी बताया है। इसमें एक सीबीआई अधिकारी के नाम का उल्लेख है जो मामले की जांच वापस लेने की मांग कर रहा है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई में ऐसा कोई अधिकारी काम नहीं करता है और लोगों से इस पत्र के झांसे में न आने का आग्रह किया है। भाजपा ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि मामले से जुड़े साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर इस मामले में जो आरोप लगाए हैं वे बेहद गंभीर हैं। श्री त्रिवेदी ने कहा कि केन्द्र सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने बदलापुर में एक स्कूल की छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ठाणे पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में करने संबंधी प्रस्ताव दें। राज्य सरकार स्कूल के स्तर पर विशाखा कमेटी के गठन का आदेश भी जारी करेगी। भारत और मलेशिया ने श्रम तथा रोजगार, आयुर्वेद और परंपरागत औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन तथा युवा कार्यक्रम और खेल सहयोग के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने जन प्रशासन, प्रशासनिक सुधार और आपसी सहयोग के क्षेत्र में भी समझौतों का आदान प्रदान किया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने फिनटेक, सेमीकंडक्टर, रक्षा उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक समृद्ध इतिहास, संस्कृति और सभ्यता वाला एक महान राष्ट्र है। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता आज शाम नई दिल्ली में होगी। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर तथा जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा बैठक में शामिल होंगे। सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को नौकरशाही में लेटरल एंट्री के विज्ञापन को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों को नियुक्त करने का विज्ञापन जारी किया था। विपक्षी पार्टियों ने इस विज्ञापन पर प्रश्न उठाए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लेटरल एंट्री को आरक्षण के प्रावधानों से जोड़ना सामाजिक न्याय के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं और उनके कार्यक्रम समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए होते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।